हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भगवान को प्राप्त करना है तो हम डायरेक्टली नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान के भक्तों के द्वारा जाना है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हमें याद आ जाती है, जैसे कि वृंदावन धाम, जैसे कि गोवर्धन पर्वत, जैसे कि कृष्ण की प्रिया गैया, गोपी, यमुना नदी, तुलसी महारानी, वृंदावन की कदंब के वृक्ष, हर चीज़ हमें कृष्ण के साथ जुड़ी हुई याद आती है। अगर हम कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, हम कृष्ण को याद करना चाहते हैं, तो कृष्ण से हर जुड़ी हुई चीज़ को भी हमें प्रेम करना है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो एक ही मंत्र है, मन मना भव मद भक्तो, मुझे याद करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर भगवान को सबके में याद करना है, कैसे याद करें, तो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अगर हमें ज्ञान होगा तो हमें भगवान को याद करना आसान हो जाएगा। अगर हम भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों को भी प्यार करना है, और वो चीज़ों को तभी प्यार कर पाएंगे जब उनके बारे में हम जानेंगे। तो हमने पिछले रविवार चर्चा की कि कैसे यमुना भगवान की बहुत प्रिय है, और अगर हम यमुना महारानी के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उनकी महिमा क्या है। तो हमने चर्चा की कैसे राधा रानी भी हमें यमुना नदी से ही मिली थी, माने वृषभानु महाराज यमुना नदी से ही राधा रानी को लेके आते हैं। हमने चर्चा की कैसे भागवतम भी यमुना नदी के पास ही बोला गया। हमने चर्चा की कैसे भगवान की सारी लीलाएं भी यमुना नदी में हुई। अक्रूर को भी भगवान ने जो है यमुना नदी में अपना यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप दिखाया। कैसे व्रजवासियों को भी भगवान ने यमुना नदी के अक्रूर घाट के द्वारा अंदर ले जाके सारे वैकुंठ का दर्शन कराया। कालिया सांप को कैसे भगवान ने जो है भक्त बना दिया यमुना नदी में उनके सिर पे नृत्य करके। ऐसे हमने अनेक लीलाओं की चर्चा की। यमुना देवी कैसे आती है गोलोक वृंदावन से, यमुना देवी कैसे कालिंदी के सिर पे, कालिंदी पर्वत के सिर पे जो है वो उतरती है और फिर वहाँ से वो प्रस्थान करती है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक विशेष 8 श्लोक है, अष्टकम जो बोलते हैं, यमुना अष्टकम, जिसमें यमुना जी के लीला के बारे में, गुण के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो मैं एक एक लाइन गाऊंगी, आप लोग मेरे पीछे गाएंगे और फिर हम उसका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटाम्, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटाम्, तटस्थ नवकानना प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, सुरासुर सुपूजित स्मर प्रीतुं श्रियं बिभ्रितं, सुरासुर सुपूजित स्मर प्रीतुं श्रियं बिभ्रितं। नमामि यमुना महम, नमामि माने नमन करना। सबसे पहले कोई भी किसी को भी जब हम ग्लोरीफाई करते हैं तो पहले उनको नमन करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, तुलसी कृष्ण प्रिय सी, नमो नमो सबको। तो यहाँ पे हम लोग यमुना देवी को पहले तो नमन करते हैं। नमामि यमुना महम, महम माने अहम, अहम माने हमारा अहंकार। शास्त्र में बोला गया है कि जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमें खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते समय हमें कुछ देना चाहिए। लेकिन देने के लिए हमारे पास क्या है? मैं बहुत बार ये कहानी सुनाती हूँ कैसे महाराज इंद्रद्युम्न जब एक बार अपने महल में बैठे थे तो वहाँ पे अगस्त्य मुनि आते हैं और महाराज इंद्रद्युम्न बड़े ही अहंकार से कहते हैं कि अरे आप आए हैं तो मैं क्या दूँ आपको, तो सोने की जो है कॉइन्स, सोने के कॉइन्स दूँ या मैं आपको गाय दूँ, मैं क्या दूँ। अगस्त्य मुनि बोलते, नहीं नहीं वो सब तो राज का धन है, तुम ऐसा कुछ दो जो तुम्हारा है। बोलते ठीक है, अगर वो राज्य का धन है तो मैं अपना पर्सनल रथ आपको दे देता हूँ गिफ्ट। फिर अगस्त्य मुनि बोलते हैं कि वो तो राजा का है, तुम राजा के पदवी में हो ना, इसलिए वो रथ तुम्हारा है, तो वो तो राजा के पदवी का हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम ऐसा कुछ दो जो तुम्हारा है। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज बोलते ठीक है, मैं मेरा शरीर आपको देता हूँ, शरीर तो मेरा है ना। फिर अगस्त्य मुनि बोलते शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर तो माता ने दिया है, तुम्हारा जो है वो तुम मुझे दे दो। फिर इंद्रद्युम्न महाराज बोलते मेरा क्या है, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या है। फिर अगस्त्य मुनि बोलते तुम्हारा अहंकार है, ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, तुम बोल रहे हो कि मैं कुछ दूंगा आपको, ये अहंकार मुझे दे दो। और फिर इंद्रद्युम्न महाराज को इतना जो है साक्षात्कार हो जाता है, वो साथ ही साथ अपने अंतर्भवन में जाते हैं और रानी को बोलते हैं कि मैं चला, अब राज्य का भार जो है आप हमारे बेटे को देके मैं अब चला, अब मुझे जो है तपस्या करना है, भगवान को प्राप्त करना है, मुझे मेरा मार्ग पता चल गया। और फिर इंद्रद्युम्न महाराज जाके जो है जंगल में तपस्या करते हैं, और फिर वहाँ कोई मुनि आते हैं और वे उनका मान ठीक से नहीं करते हैं, तो इसीलिए फिर उनको श्राप मिलता है और वो अगले जन्म में हाथी बनते हैं। और उस हाथी की कथा भागवत में हम पढ़ते हैं, गजेंद्र। तो इंद्रद्युम्न महाराज को क्या बोला अगस्त्य मुनि ने, जो तुम्हारा है वो मुझे दे दो, तुम्हारा क्या है, अहंकार। तो यहाँ पे हम बोलते हैं नमामि यमुना महम, ओ यमुना महारानी मेरा जो अहम है, मेरा ये जो अहंकार है मैं आपको समर्पित करता हूँ। नमामि यमुना महम, यमुना माने क्या, यमुना जी के नाम का ही मतलब है यम ना, जिसका नाम लेने से यमराज के पास नहीं जाना पड़ता वो है यमुना। सो ऐसे यमुना महारानी जिनका नाम लेने से यमुना के यम के पास ना जाना पड़े, ऐसे यमुना महारानी को मेरा प्रणाम। नमामि यमुना महम। सेकेंड लाइन, सकल सिद्धि हे तुम मुदा, सकल सिद्धि माने जो सारी सिद्धियां हमें दे सकती है। अब सारी सिद्धियां मतलब कैसी सिद्धियां, सिद्धियां मतलब आप ये मत सोचो सिद्धि माने अनिमा लघुमा महिमा, वो सारी सिद्धि की बात नहीं हो रही है, ये कुछ अलग प्रकार की सिद्धियां है जो यमुना महारानी हमें दे सकती है। सकल सिद्धि, सारी सिद्धियां, क्या है वो सारी सिद्धियां, आचार्यगण बोलते हैं कि ये जो सारी सिद्धियां यमुना महारानी हमें देती है, ये सारी सिद्धियां यमुना महारानी को भगवान कृष्ण से मिली है। क्योंकि भगवान जब इस भूलोक में आते हैं तो भगवान सोचते हैं कि ये जो मेरे में ऐश्वर्य शक्ति है ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐश्वर्य शक्ति मुझ में या मेरे भक्त के बीच में बाधा है। क्योंकि मेरा ये ऐश्वर्य शक्ति जब भक्त देखता है तो वो सोचता है कि ये भगवान है, मैं नहीं चाहता कि वो सोचे कि ये भगवान है, मैं चाहता हूँ कि मैं जीव का अधीन बनूँ, मैं उसका सेवक बनूँ, मुझे उससे विशुद्ध प्रेम चाहिए, और ये ऐश्वर्य बीच में आता है। तो इसीलिए ये सारा ऐश्वर्य जब भगवान भूलोक में आते हैं तो उठा के यमुना देवी को दे देते हैं। समझ में आई बात, जिस तरह से कभी कभी हमने कोई स्वेटर या शाल पहन के रखा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, हॉल में एसी नहीं है और हमको लगा रही स्वेटर पहन के आ गए लेकिन यहाँ तो गर्मी हो रही है, तो क्या करेंगे, हमारा स्वेटर निकाल के किसी को बोलेंगे जरा पकड़ोगे, सही है ना, है हमारा, देते हैं 2 मिनट पकड़ो गर्मी लग रही है। वैसे ठाकुर जी स्वेटर के जैसे ये सारे ऐश्वर्य निकाल गए यमुना देवी को, बोलते तुम पकड़ो मुझे नहीं चाहिए वृंदावन में ये सारा ऐश्वर्य, मुझे तो सहज प्रेम करना है भक्तों के साथ, तो ये सारे ऐश्वर्य यमुना महारानी के पास आ जाते। ये क्या है ऐश्वर्य, ये यमुना महारानी में ये ऐश्वर्य है, और जो यमुना जी की पूजा करते हैं उसमें ये सारे ऐश्वर्य चले जाते हैं। तो अगर किसी को ये सारे ऐश्वर्य चाहिए तो यमुना जी की प्रार्थना करनी। तो ये ऐश्वर्य क्या है, बोलते सबसे पहला ऐश्वर्य ये है कि यमुना जी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, हमें जो भी इच्छा हो भौतिक या आध्यात्मिक वो पूरी करती है। दूसरी सिद्धि ये है कि यमुना जी हमें भक्ति करने की काबिल बनाती है, भक्ति करने की काबिल बनाती है, यमुना जी हमें और भगवान को मिलाती है, ब्रिज, जैसे एक ब्रिज होता है हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो एक ब्रिज पे चढ़ के जाना पड़ता है नदी के ऊपर से, उसी तरह से यमुना जी भक्त को और भगवान को मिलाती है। एक प्रसिद्ध कथा आती है कैसे एक बार राधा रानी और कृष्ण दोनों निकुंज में बैठे हैं और राधा रानी कृष्ण को बोल रही है कि परस्पर जब दोनों प्रतिद्वंदी समान हो तो युद्ध करने में मजा आता है। आज हम अगर तलवार लेके युद्ध करें तो सामने वाला भी तलवार लेके युद्ध करे तो मजा आता है। अगर आप अकेले ही तलवार से युद्ध करें और सामने वाला सिर्फ मार खाए जा रहा है तो मजा नहीं आता, एकदम इक्वल होना चाहिए। तो राधा रानी कृष्ण को बोलती है कि हम दोनों में समानता नहीं है, मैं बार बार रूठ जाती हूँ, मुझे बार बार क्रोध आता है, आप बार बार मना लेते हो, लेकिन आप तो कभी मुझ पर क्रोध नहीं करते, मुझे कभी ये चांस नहीं मिलता कि मैं आपको मनाऊं, कि आप हमेशा मुझे खुद ही मनाते रहते हो, तो उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं क्रोध करूं फिर आप क्रोध करो, दोनों क्रोध करें तब जाके आनंद आता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि आपका सुंदर चेहरा देख के मुझे नहीं आता क्रोध, मैं क्या करूं। राधा रानी बोलती नहीं ऐसे नहीं है, क्रोध आप एक बार ऐसा मुझसे रूठ जाओ, मैं आपको मनाती हूं, मुझे भी वो आनंद देखना है कि क्या होता है, मनाने में कैसे लगता है। तो दोनों जब ऐसे बातचीत करते हैं तब कृष्ण राधा रानी को बोलते कि देखो प्रिया, अगर तुमको मैं ऐसा देखूंगा मुझे क्रोध नहीं आता, एक काम करते हम रोल बदल लेते हैं, तुम मेरे कपड़े पहन के कृष्ण जैसे लगो, मैं तुम्हारे कपड़े पहन के राधा रानी जैसे लगू, फिर मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी जैसी नाटक करने का, क्रोध करने का। तो राधा रानी बोले ठीक है। तो राधा रानी जो है कृष्ण को राधा रानी के जैसे तैयार कर रही है, कृष्ण को जो है गोपी के कपड़े पहना रही है, तैयार कर रही है, बिंदी लगा रही है। तो राधा रानी कृष्ण को पूछती है कि कौन सा बिंदी लगाओ, तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम जो लगाती हो अर्धचंद्रमा वही लगाओ। तो ऐसा करके जो है राधा रानी कृष्ण को सजा देती है, कृष्ण राधा रानी को सजा देते हैं, मोर मुकुट और जो मोर का जो पीछ होता है और मुकुट है, हाथ में बंसुरी है, दोनों सजना हो गया। अब एक दूसरे को जो है वो आईने में देख रहे हैं, तो राधा रानी ने आईने में देख के कृष्ण को पूछा कि देखो दोनों में से सुंदर कौन लग रहा है। तो कृष्ण ने बोला कि सुंदर तो मैं लग रहा हूँ, मैं देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। राधा रानी ने बोला नहीं नहीं फिर से देखो, गलत हो रहा है, मैं देखने में ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। कृष्ण ने बोला कि गोरे गोरे कृष्ण कैसे लगेंगे, बेकार के लगेंगे। तो राधा रानी ने बोले काली काली राधा कैसी लगेगी, बेकार लग रही, काली काली कोई होता है क्या, मैं गोरी हूं इसलिए अच्छी लगती हूँ, अब काली गोपी तो किसी को अच्छी नहीं लगती। अब दोनों में तर्का तर्की हो गई, अब ज्यादा तर्का हो गई तो दोनों क्रोध आ गए, बोले मुझे नहीं बात करना तुमसे। राधा रानी बोले मुझे भी नहीं बात करना आपसे, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि काली गोपी कभी सुंदर नहीं लगती, गोरी सुंदर लगती। कृष्ण ने बोला ठीक है मुझे भी नहीं बात करना, तो कृष्ण चले गए दूसरे कुंज में। अब थोड़ी देर के बाद राधा रानी को याद आया कि अच्छा अच्छा कृष्ण नाटक कर रहे होंगे, मैंने बोला था ना क्रोध करो मान करो। राधा रानी को याद आ गया तो पीछे पीछे भागी कि कहाँ चले गए, कौन से कुंज में चले गए, लेकिन कहीं भी कृष्ण नहीं मिल रहे। तो सब जगह ढूंढ रही है राधा रानी, फाइनली एक जगह कृष्ण मिल गए। फिर राधा रानी जाके कृष्ण के चरण पकड़ लिए, बोला नहीं नहीं मुझे माफ करो, काली गोपी ही सुंदर लगती है, हाँ ये सादा रंग जो है वो तो ऐसे ही मिल जाता है, काला ही सुंदर है। कृष्ण बात नहीं कर रहे, ना हंस रहे ना बात कर रहे, बोला नहीं बोल दिया जो बोल दिया, मेरा अपमान कर दिया, मेरे रंग का अपमान कर दिया, मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। अब राधा रानी रो रही है, कृष्ण मान नहीं रहे है, राधा रानी बहुत तड़प रही है, क्या करे समझ में नहीं आता। तो तब जो है यमुना देवी आती है और फिर यमुना देवी जो है राधा रानी को सांत्वना देती है कि मैं मनाऊंगी कृष्ण को। और फिर जो है राधा रानी ने जो कृष्ण का वस्त्र धारण किया था वो यमुना देवी धारण करती है और फिर वो कृष्ण के पास जाती है। और जब वो यमुना देवी को देखते हैं अपने वस्त्र में, मोर मुकुट धोती पीताम्बरी हाथ में मुरली, और तब कृष्ण एकदम हंस पड़ते हैं कि एकदम ये कौन है एकदम मेरे जैसा, क्योंकि यमुना काली है ना, तो ये कौन है एकदम मेरे जैसे लग रहा है। और फिर जो है यमुना जी आके बोलती है कि नहीं नहीं कृष्ण तो काले ही अच्छे लगते हैं, तो गोरे कृष्ण अच्छे नहीं लगते। जब कृष्ण हंसने लगते हैं तब यमुना जी राधा रानी का हाथ पकड़ के कृष्ण से मिलाती है, ये यमुना जी का काम है। और जब राधा और कृष्ण को वो मिला देती है तब राधा रानी प्रसन्न होती है, यमुना जी को बोलती है कि आप यही आपका काम है, आप यही करिए भक्तों को भगवान से मिलाना, जब भक्त भगवान से रूठ जाए या भगवान भक्त से रूठ जाए आप दोनों को मिला दो। तब से जो है यमुना जी का ये काम है भक्तों को भगवान से मिलाना। तो ये एक सिद्धि मिलती है जब हम यमुना जी की पूजा करते। दूसरी बात है, यमुना जी हमें दिव्य शरीर देती है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते। वो दिव्य शरीर हमें गोलोक में ज़रूरत पड़ती है ना। जब हम गोलोक जाते हैं तो हम ये शरीर में नहीं जाते हैं, तो कौन प्रदान करेगा शरीर, के कौन से शरीर में आप भगवान की सेवा करोगे? तो वो यमुना जी वो शरीर देगी। यमुना जी भगवान की सेवा में उपयोगी शरीर देती है, वेदर वो भूलोक में हो या गोलोक में हो। भूलोक में भी भगवान की सेवा करने के लिए हमें शरीर चाहिए ना, तंदुरुस्त शरीर चाहिए, मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त चाहिए, शारीरिक भी हमारा रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? तो जो यमुना जी का पान करता है, यमुना जी की नदी में स्नान करता है, यमुना जी की पूजा करता है, उसे यमुना जी एक अच्छा शरीर देता है जो भगवान की सेवा में उपयोगी बने। भगवान की भक्ति यमुना जी हृदय में जगाती है। कोई मूड हो, कोई नास्तिक भी हो, अगर वो यमुना जी की नदी में स्नान करता है तो उसमें भक्ति जागती है, भगवान का प्रेमी बनता है। तो ये यमुना जी में जो अलग अलग सिद्धियाँ हैं, भक्त को भगवान से मिलाना, भगवान की सेवा करने का मौका देना, भगवान की लीला में भाग लेने का मौका भी यमुना जी दे सकती है। जिस तरह से तुलसी महारानी भी भगवान की सेवा में भाग लेने का मौका हमें दे सकती है, इसलिए तो तुलसी की रोज पूजा करते हैं हम लोग। क्या प्रार्थना करते हैं? ए निवेदन धारो सखी रनुगत कारो, सेवा अधिकार दिए करो निज दास, हमको सेवा का अधिकार दो, भगवान को हम देखेंगे कुंज में। ये तुलसी महारानी दे सकती है, उसी तरह से यमुना भी दे सकती है भगवान की सेवा करने का मौका। भगवान की सेवा करने की बुद्धि, हमें बुद्धि भी नहीं है भगवान की सेवा करने की। इतने महीने हो गए, इतने सारे भक्तों को गौर निताई के विग्रह दिए हैं, क्या बोलते हैं भक्त लोग, क्यों स्थापना नहीं की अभी तक? बोलते माता जी हमारे घर में अच्छा सिंहासन नहीं है, जब बड़ा सिंहासन बनाएंगे तब भगवान की स्थापना करें, जब हम अच्छा भोग बना पाए, जब हमारे पास टाइम हो, अभी तो बच्चा छोटा है, जब हमारे पास सारी सुख सुविधा हो तब हम भगवान की स्थापना हमारे घर में करेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं कि भैया सिंहासन तो मेरे पास गोलोक में भी है, भोग तो मेरे पास गोलोक में भी है, सारी सुख सुविधा तो मेरे पास में गोलोक में भी है, लेकिन गोलोक में तुम नहीं हो ना, मैं तुम्हारी सेवा लेने के लिए आया हूँ। तुम कौन सा भोग देते हो, दिन में 11 आइटम देते हो कि 2 आइटम देते हो, वो मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी सेवा लेने आया हूँ। और हम भगवान को रख दिए कबड़ में, बड़ा सिंहासन बनाएंगे तब भगवान को, अरे तुम पूरा दिन 16 माला जप कर रहे हो, भगवान को प्राप्त करने की कितनी सारी कोशिश कर रहे हो, अगर आप किसी भक्त को पूछो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बोलेगा गोलोक जाना, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है गोलोक जाना। भैया गोलोक जाके क्या करोगे? भगवान की सेवा। तुम जाना चाहते हो गोलोक भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान आए हुए तुम्हारे घर में, तुमने कबड़ में रखा हुआ है, क्या फायदा है? भगवान आए हैं गोलोक से तुम्हारी सेवा लेने के लिए, और तुम बोलते हो जरा वेट करो, अभी टाइम नहीं आया, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास सारे फैसिलिटी अभी रेडी नहीं है। ये फैसिलिटी के लिए नहीं वेट करना है, जब ठाकुर जी आए हैं घर में तो पहले स्थापना कर दो, पहले पूजा शुरू कर दो, तुम्हारे पास में जो है वो मान लेंगे, क्योंकि उनके पास तो गोलोक में बहुत कुछ है। तुम क्या बना दोगे सिंहासन? हीरे का बनाओगे, सोने का बना दोगे, मोती का सिंहासन बनाओगे? तुम क्या करोगे? तुम जितना भी करोगे वैकुंठ के सिंहासन से गोलोक के सिंहासन से बहुत छोटा पड़ेगा। बस तुम रख लो अपने, सेवा पूजा शुरू कर दो, उसके बाद जब तुम्हारा मन करे कभी और एकदम धूमधाम से कर लेना, कोई और प्रोग्राम कर लेना, लेकिन ठाकुर जी को कबड़ में मत रखो, शुरू कर दो सेवा करना। तो ये बुद्धि यमुना जी देती है कि भगवान, क्योंकि हमारे पास तो बुद्धि भी नहीं है, हम है सामने ठाकुर जी है, फिर भी बुद्धि नहीं है कि हमें सेवा करनी है, तो ये बुद्धि हमें यमुना जी देती है। ये है सर्व सिद्धि जो यमुना जी देती है ना, भगवान से मिलाना, भगवान से प्रीति करना, भगवान की सेवा करना, सेवा उपयोगी शरीर देना, और भगवान की लीलाओं में भाग लेने का अवसर। अगर हम भगवान की लीलाएं पढ़े तो एक लीला आती है जहाँ नारद मुनि भगवान की रास लीला में भाग लेना चाह रहे थे, तब पूरणमासी ने क्या किया, नारद मुनि को पकड़ के यमुना में डुबकी लगा दी। जब यमुना में डुबकी लगाई तो नारद मुनि क्या बन गए, नारदीय गोपी बन गए। और जब गोपी बन गए तो फिर रासलीला में भाग लिया। उसका मतलब रासलीला में भाग लेना है तो किसके द्वारा जाना है, यमुना मैया। यमुना मैया वो शरीर देती है जिससे हम भगवान की लीला में भाग ले सकते। तो यहाँ पे आता है नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हे तुम मुदा। संसार को पवित्र बनाती है यमुना देवी, भगवान का भाव, प्रेम करने का भाव देती है यमुना देवी। गंगा जी और यमुना जी में ये एक ही डिफरेंस है, गंगा जी हमें पापों से मुक्त करती है और जब हम पाप से मुक्त हो जाते हैं तो यमुना जी हमें भगवान को प्रेम करने का भाव देती है। गंगा जी जो है स्नान कराती है, साफ करती है, जिस तरह से एक शिशु को माँ साफ करती है, और यमुना जी उस शिशु का श्रृंगार करती है कि तुम ऐसे सजो तो मुकुंद के प्रिय होंगे, भगवान के तुम प्रिय होंगे। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज। यमुना जी किस चीज से बनी हुई है, आप बोलोगे किस चीज से बनी हुई है माता जी, पानी से बनी हुई है। मुरारी पाद पंकज, मुरारी के पाद पंकज मतलब ठाकुर जी के पाद पद्म के जो रेणु है उससे बनी हुई है यमुना जी। आप अभी इस बार वृंदावन जाओ तो यमुना जी के पास थोड़ा पास जाके देखो, यमुना जी में पानी कम है मट्टी ज्यादा है ना, सच है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब ठाकुर जी लीला करने आते हैं यमुना के तट के पास अपने गायों को लेके, गोप बालक को लेके, तो यमुना जी इतनी आतुरता से भागती है, भगवान के दो चरण पकड़ लेती है और भगवान को अपने पानी से स्नान करवा देती है उनके चरणों का। अब जिस तरह से हमारे जो पैर होते हैं उसमें से हमेशा गंदी मट्टी निकलती है, ठाकुर जी के पैरों से हमेशा केसर निकलता है। अब पढ़ो भागवत में तो ठाकुर जी के पैरों से, श्री चरण से केसर निकलता है, बहुत सुंदर सुगंधित होता है। तो क्या करती है यमुना जी, जितने बार ठाकुर जी तट के पास आते हैं उनके पैर पकड़ लेती है और उनके पैरों की जो रज है वो लेके डिपॉजिट कर लेती है अपने पास में। तो ऐसे हर बार डिपॉजिट करके 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 क्या हो रहा है, एकदम माटी से भर गया, पानी कम माटी ज्यादा। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटा। और भगवान के चरण की जो रेणु है वो कैसी है, स्फुरद मंद। स्फुरद मंद माने वे जागृत है, चेतना से भरी है, भगवान से संबंधित हर चीज में चेतना है, जड़ नहीं है, चेतना है। तो स्फुरद मंद रेणुत्कटा, भगवान के चरणों की रज जो है यमुना जी अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पे भगवान का नाम स्पेशली बोला गया है मुरारी। क्यों मुरारी नाम दिया, यहाँ पे और कोई भी तो नाम दे सकते थे। उसका रीजन ये है कि भगवान ने जो मूरा नाम के राक्षस का वध किया था, अगर आप जानते हो तो ये मूरा ने क्या किया था, प्राग ज्योतिषपुर नाम का जो ये जगह है जहाँ नरकासुर रहता था, मूरा राक्षस ने वहां क्या किया था, 16,000 राजकुमारियों को जेल में नरकासुर ने रखा था। अब ये राजकुमारियां कहीं भाग नहीं सकती क्योंकि मूरा ने जो है उस पूरे जगह को बहुत ही अलग अलग प्रकार से फेंसिंग किया हुआ था। उन दिनों में भी ऐसा फेंसिंग था कि कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। और मूरा क्या करता था, ये पूरा फेंसिंग करने के बाद वो पानी के नीचे जाके सो जाता था। ये मूरा राक्षस के 5 सिर थे, ये जो राक्षस है मूरा उसके 5 सिर थे और पानी में। तो ये क्या कर रहा था, ये भक्तों को भगवान से मिलने के लिए रोक रहा था। कौन रोक रहा था, मूरा। तो जो राक्षस भक्तों को भगवान से मिलने से रोकता है, ऐसे राक्षस के आप अरी हो, माने एनिमी, माने शत्रु हो। तो ऐसे मूरा राक्षस को जो है ठाकुर जी ने मार डाला या उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे इसलिए उनका नाम बोले मुरारी पद पंकज। ऐसे मुरारी की रेणु यमुना जी में है जिस रेणु को हमारे सिर पे धारण करने से हमारे भौतिक जीवन में भी जो बाधाएं आ रही है ना, ये सारी बाधाएं जो आ रही है, जो माया ने बनाई है फेंस हमको और भगवान को मिलने नहीं देती है, ये सारी फेंस टूट जाएगी। भगवान को एक प्रकार की ये प्रार्थना है, जिस तरह से आपने मोरा को मार के ये सारी 16,000 राजकुमारियों को आपने अपना लिया, वैसे यमुना जी की कृपा से, भगवान मुरारी के चरण की रेणु से हमारी जीवन की भी ये सारी बाधाएं मिट जाएगी, हम भगवान से मिल पाएंगे। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटम। दूसरे लाइन में बोलते हैं, तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना। यहाँ पे बहुत सुंदर एक वर्ड हमने मिस किया, यहाँ पे बोला गया सकल सिद्धि हे तुम मुदा, मुदा माने आनंद से, जो यमुना जी की पूजा करता है आनंद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं चार प्रकार से करते हैं, कोई भी काम ले लो, अब सुबह नींद से उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी काम करोगे वो चार प्रकार से होता है। या तो भय से होता है, डर लगता है भाई नहीं उठेंगे तो डांटेंगे, नहीं उठेंगे तो नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो ये दुखी हो जाएगा, या तो भय से करोगे, या तो इसीलिए करोगे क्योंकि आपका कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए मुझे करना ही है, तो आप करते हो। कुछ काम आप इसीलिए करते हो क्योंकि आपका उसके पीछे कोई मतलब है, मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, इच्छा। कुछ भय से करते हो, कुछ कर्तव्य है इसीलिए करते हो, कुछ इच्छा से करते हो, पर बहुत कम ऐसा काम आप करते हो निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से बहुत कम काम करते हो, तो निस्वार्थ भाव से करना, प्रेम से करना, आनंद से करना, ये सबसे उत्तम है। सारे कार्यों में जो कार्य आनंद से किया जाए, प्रेम से किया जाए, वो उत्तम कार्य है। तो यहाँ पे बोलते हैं नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हे तुम मुदा, आनंद से करो। यमुना जी का जब आप जप करोगे, ऐसा नहीं कि डर से या इच्छा से कि मैं यमुना जी को याद करूंगा या स्नान करूंगा तो मेरा ये सब नहीं, प्रेम से, आनंद से, बिना कोई कामना के यमुना जी की पूजा होनी चाहिए या यमुना जी का स्मरण होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना। यमुना जी के तट के आसपास बहुत सारे वृक्ष हैं, और ये सारे वृक्ष कैसे हैं? पहले तो ये सारे वृक्ष ऊपर की ओर चले जाते हैं क्योंकि वो भगवान को ढूंढते हैं, कहाँ है, हम कृष्ण को देखना चाहते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि हम ऊपर क्यों ढूंढ रहे हैं, भगवान तो नीचे है, भू वृंदावन में है, यही वहीं घूम रहे हैं, तो फिर वो नीचे की ओर झुक जाते हैं। और जब कभी नीचे की ओर झुक जाते हैं कि मैं भगवान के चरण को छू लूं, तब उन्हें याद आता है कि अगर मैं नीचे झुकूंगा तो भगवान को छाया नहीं मिलेगा सूर्य से, इसलिए फिर ऊपर आ जाते हैं। फिर कभी नीचे झुक जाते हैं, फिर कभी ऊपर उठ जाते हैं। तो यमुना नदी के आसपास के वृक्ष सब इस तरह से है, तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना। और ये सारे वृक्ष में जो फूल है वो सारे यमुना नदी के पानी पे गिर जाते हैं, राइप होके हुए फ्रूट्स है या फल है या फूल है वहाँ गिरे हुए हैं। तो आप इमेजिन करो यमुना नदी का जो पानी, उनके आसपास की जगह कितनी सुंदर लगती होगी देखने में, क्योंकि बहुत सारे पुष्प गिरे हुए हैं और वो ही पुष्प को हाथ में लेके गोपिका यमुना जी का पूजन करते हैं, कात्यायनी व्रत कहे थे ना, वही पुष्पों को लेके फिर उनका पूजन करते हैं। और यमुना जी के नदी में बहुत सारे कमल उगे हुए हैं, तो वो कमल की सुगंध भी बहुत अच्छी है, और दूसरे जो फूल गिरते हैं वो भी बहुत सुंदर सुगंध वाले हैं, तो बहुत सुंदर वातावरण जो है यमुना जी का लग रहा है। दूसरी लाइन, सुरा सुर सुपूजित स्मर प्रितुम श्रियम विभ्रितम। सुरा सुर पूजित माने सुर असुर, दोनों प्रकार के लोग जो है यमुना जी की पूजा करते हैं, सुर भी करते हैं असुर भी करते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि दोनों प्रकार के भक्त, जैसे व्रज में दो प्रकार की गोपियां थी, परकीय भाव की भी थी, सकीय भाव की भी थी। हाँ, परकीय भाव की भी थी, जो गोपिका ऑलरेडी विवाहित गोपिका है लेकिन फिर भी कृष्ण को पति मानती थी, परकीय भाव से और सकीय भाव से। उसका और एक मतलब ये भी होता है कि दो प्रकार की गोपी जो मान करती थी जो दीन भाव की थी, दोनों ही यमुना जी की पूजा करते हैं। मान करने वाली गोपी माने राधा रानी जो हमेशा मान करती है, और दीन भाव की गोपी माने चंद्रावली। गोपियों में भी दो प्रकार की गोपियां थी वृंदावन में। कुछ गोपियां राधा रानी की टीम में थी। राधा रानी की टीम में जो गोपियां का थी वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर की थी, वो जैसे बोले वैसे कृष्ण को करना है। और चंद्रावली के ग्रुप में जो गोपी है वो कृष्ण जैसे बोले वैसे वो करते हैं, वो दीन भाव की है। ये लोग सारे मान भाव के हैं। तो यहाँ बोला गया है कि सुर असुर दो टाइप की गोपी या दो टाइप के भक्त या एक्चुअल मीनिंग सुर असुर भी ले सकते हैं आप, वो सारे पूजिता यमुना जी की पूजा करते हैं। स्मर पितुम श्रियम विभृतम। स्मर पितुम माने स्मर माने स्मरण करना, स्मर पितु माने ये स्मरण आता कहाँ से है, ये स्मरण का पिता कौन है। ये स्मरण का पिता है कृष्ण। क्यों? क्योंकि हम भगवान का जब स्मरण करना चाहते हैं उतना आसान नहीं है। हमें दो चीज की जरूरत है भगवान का स्मरण करने के लिए। एक तो सारे पापों से विमुक्त होना है तभी हम स्मरण कर सकते हैं। अगर हमारा चित्त अगर अशुद्ध है तो हम भगवान को याद नहीं कर सकते। और दूसरी चीज हमें चाहिए भगवान को याद करने के लिए, वो है ठाकुर जी की कृपा। अगर वो हम पे कृपा करते तभी हम उनको याद कर सकते हैं। तो इसीलिए स्मरण का पिता कौन है, कृष्ण। स्मर पितुम श्रियम विभृतम। यहाँ पे कृष्ण के बारे में बोला गया है कि यमुना जी क्या करती है, कृष्ण की भक्त है, कृष्ण की पूजा करती है, कृष्ण को आनंद देते हैं। कृष्ण के लिए नाम यूज किया गया है स्मर पितुम। या ये भी बोला जा सकता है स्मर का दूसरा अर्थ है कामदेव। और कामदेव का पिता कौन है, भगवान कृष्ण। उनसे मदन जो है वो सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन मदन मोहन भगवान जो है वो मदन को भी डिफीट कर देते। मदन आता है कृष्ण से, मदन मोहिनी है राधा रानी जो कृष्ण को भी मोहित कर देती है। तो स्मर पितुम जो कामदेव के पिता है ऐसे कृष्ण को मिलाती है यमुना देवी। तो समझ में आया, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटम् तटस्थ नव कानना प्रकट मोद पुष्पांगुना सुरासुर सुपूजिता स्मर पितुम श्रियं विप्रितम्। नेक्स्ट उसमें जाएंगे, नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। कलिंद गिरिमस्तके पतद मंद पूरोज्वला कलिंद गिरिमस्तके पटद मंद पूरोज्वला विलास गमनोलस प्रकट गंड शैलोनता विलास गमनोलस प्रकट गंड शैलोनता सघोष गति दंतुरा समधि रूढ़डोलोत्तमा गति दंतुरा धीरूढ़डोलोत्तमा मुकुंद रति वर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता मुकुंद रति वर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। यहाँ पे बोला गया है कलिंदी गिरी मस्तके। यमुना जी के दो पिता है, जिस तरह से कृष्ण के दो पिता है नंद महाराज और वसुदेव, यमुना जी के भी दो पिता है। एक है सूर्यदेव और एक है कलिंद पर्वत। तो यमुना जी जब गोलोक धाम से यहाँ प्रस्थान करती है तो सबसे पहले वो कलिंद के शिखर पे उतरती है, और वहां पे फिर कलिंद पर्वत जो है उनको गोद में लेके वहां से वो जो है गोलोक की ओर मतलब गोकुल की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कलिंदी कलिंद गिरी मस्तक। कलिंद माने गिरी का नाम है, पहाड़ का नाम है, गिरी माने पर्वत, उसके मस्तक से यमुना जी शुरू होती है। पटद मंद पूरोज्वला, जब यमुना जी कलिंद के शिखर से नीचे गिरती है तो तो वो इतने वेग में गिरती है, इतने स्पीड में गिरती है कि आप अगर दूर से देखो उनका जो फॉल है, कोई गया है यमुनोत्री? गए यमुनोत्री में अगर आप जाके देखो तो जिस तरह से गिरती है यमुना जी, आपको लगेगा किसने बोला यमुना काली है, एकदम वाइट लगती है यमुना जी, एकदम वाइट, इतना स्पीड में वो नीचे गिरती है। तो यहाँ पे लिखा है कि पतद मंद पूरोज्वला, हमें लग उज्ज्वल यमुना जी बहुत ज़्यादा उज्ज्वल लगती है। तो वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा लगती है, एक्चुअली है काली, देखने में गोरी क्यों लग रही है, क्यों गोरी लग रही है, आनंद में, कृष्ण से मिलने के आनंद में इतनी स्पीड में आ रही है, आनंद में है, एकदम फेस उनका जो है ब्राइट हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं विलास गमनोलस प्रकट गंड शैलोनता, विलास गमनोलस, जब यमुना महारानी नीचे आती है, विलास, विलास से आना मतलब वॉकिंग इन स्टाइल, स्टाइल से आती है एकदम, ऐसे नहीं एकदम, उनकी जो चाल है देखने लायक है, कभी ऐसे जाएगी तो कभी ऐसे जाएगी, बहुत ही स्टाइल में वो आती है, उल्लास पूर्वक आती है। और एक वैष्णव आचार्य टिप्पणी करते हैं कि अगर आप पूरा यमुना जी का रूट फॉलो करो तो कभी नीचे जा रही है तो कभी कभी ऊपर उठ के फिर शिखर के ऊपर से फिर नीचे की ओर आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर ऊपर, क्योंकि बहुत अलग अलग पहाड़ है। और ये सारे पहाड़ कैसे है, प्रकट गंड शैलोनता, प्रकट गंड शैलोनता माने हाथी जैसे बड़े बड़े पहाड़ है, और ये हाथी जैसे बड़े बड़े पहाड़ को चीरते हुए तोड़ते हुए कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे जाती है। तो बोलते हैं आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं कि क्यों जाती है फिर ऊपर, अब आ गई ना कालिंदी की गिर मस्तक से तो अब जल्दी जल्दी चली जा सकती है ना, बोलते बीच बीच में ऊपर जाके देखती है कि अब गोकुल जाने का रास्ता और कितना दूर है, और कितना दूर है, और कितना टाइम लगेगा। हमें कहीं, हम जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते तो हमें भी यही होता है कि और कितना दूर है, सबसे पहले हमारा वही इंटरेस्ट होता है, बाकी कुछ होना और कितना किलोमीटर बाकी है, हाँ हम और नहीं चल सकते, पैर में दर्द है, उस तरह से यमुना जी ऊपर जाती है, देखती है और कितना दूर है गोकुल, जल्दी जाना है मुझे। तो बोलते प्रकट गंड शैलोनता, हाथी जैसे पहाड़ के ऊपर से नीचे नीचे ऊपर करती हुई जाती है, जाते जाते क्या कर रही है, सघोष गति दंतुरा समधि रूढ़ डोलो तमा, सघोष, घोषणा करना मतलब, घोष मतलब आवाज, इतनी जोर से आवाज करती है यमुना जी, अगर आप देखो यमुनोत्री में जो घोषणा से यमुना जी आवाज करती है, लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं कि वो आवाज बहुत मीठा है, जो भक्त है उसको समझ में आता है, वो आवाज में भी इतनी मिठास है एकदम। तो आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे यमुना जी गाना गा रही है, जिस तरह से कभी कभी अगर हम कोई अच्छे मूड में हो तो हम कुछ गाते 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 खाना बनाएंगे, गाते गाते जाएंगे, बस अच्छा लग रहा है, बस कुछ अच्छा लग रहा है आज, तो मन में कुछ ना कुछ गाना बजता है, तो उस तरह से ये भी खुश है कि मैं जा रही हूँ गोकुल, भगवान की सारी लीलाओं में अब मैं भाग लूंगी, तो गाना गाते गाते वो जा रही। सघोष गति दंतुरा समधि रूढ़ डोलोत्तमा, डोलोत्तमा माने जैसे कोई नई वधू डोली में जाती है ना, वैसे डोली में जा रही है, तो जब डोली में कोई बैठता है तो आपको पता है क्या होता है, कोई बैठा है डोली में, नहीं बैठे, आजकल डोली में किसी की विदा नहीं होती, लेकिन अब डोली में बैठना है तो बरसाना में डोली में ले जाते हैं कभी कभी, अगर आप चल ना पाओ तो दो जने आपको पकड़ के डोली में ले जाएंगे ऊपर, बरसाना में अब दर्शन करना है तो अब डोली में आप जब बैठो, मैं गई थी बचपन में गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन, तो केदारनाथ में जो है हमने डोली किए थे ऊपर चढ़ने में, मुझे याद है कि डोली में जब आप बैठो तो ऐसा ऐसा होता है डोली, वरुण ज़्यादा डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो डोली में कैसा ऐसा स्विंगिंग अफेक्ट होता है ना, झूला का अफेक्ट, तो बोलता है कि डोलोत्तम, ऐसे ही यमुना जी जा रही है, मतलब सीधा सीधा नहीं जा रही है, स्टाइल से ऐसा करके फिर ऐसा जा रही है, फिर ऐसा जा रही है, घूम रही है जैसे कि कोई नई वधू डोली में ढोलते डोलते जा रही हो कृष्ण के पास। फिर बोलते हैं मुकुंद रति वर्धनी जयति पद्म बंधो सुता, ये जो इतने आनंद से भगवान के पास में जा रही है, सी भगवान के पास जब हम जाते हैं हमें आनंद से जाना चाहिए। मैं बहुत बार देखती हूँ बहुत सारे भक्त एकदम दुखी दुखी मुंह बना के मंदिर आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। हमारे मुख हमेशा आनंद होना चाहिए। हम इतने फॉर्चुनेट है, सी हमें एक हर पल ये सोचना चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली है। हमें पता है कि कृष्ण भगवान है, बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं कि कृष्ण भगवान है ना। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं इस दुनिया में जो नहीं जानते। हम जानते हैं कृष्ण भगवान है, हम मानते हैं कृष्ण भगवान है, हम जाना चाहते हैं गोलोक वृंदावन, हम उस मार्ग में चल पड़े हैं। कभी धीरे चलते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी उठते हैं, पर मार्ग तो सही है, सही गुरु मिला है, प्रभुपाद जी जैसा कोई हमारे जीवन में आया है, भक्तों का संग है, सिटी में इस्कॉन का सेंटर है, और क्या चाहिए जीवन में, मुझे समझ में नहीं आता। सब कुछ तो है, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। फिर भी अगर कोई भक्त ऐसा मुंह करके बैठे तो जैसे कि सब कुछ लुट गया दुनिया में, कुछ भी नहीं। आनंद होना चाहिए। भक्त हमेशा रोती सूरत बना के भगवान के पास जाते, भगवान बोर नहीं हो जाएंगे। भगवान को तो यमुना जैसा भक्त चाहिए, गाते हुए हंसते हुए उल्लास से विलास स्टाइल से भगवान के पास आए। हम तो हमेशा हमारी रोती सूरत लेके खड़े, पहले बोलेंगे इस बेटा को पास कर दो, उस बेटी का ये ठीक कर दो, ये दे दो, वो दे दो, वो खत्म हो जाएगा फिर और एक नया रोना। हमारा हमेशा ये गाना रेडी रहता है, रोता हुआ गाना, और चाहिए मुझे, और चाहिए, मैं खुश नहीं हूँ। पर भगवान के पास जाने की सही पद्धति है ये, आनंद से जाना चाहिए, खुशी हमारी मुख पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। जब भगवान देखे तो उन्हें भी अच्छा लगे। किसको अच्छा लगता है रोती सूरत देखना, किसी को अच्छा लगता है क्या? मुकुंद रति वर्धनी, यमुना जी कैसी है, मुकुंद के ऊपर में रति बढ़ाती है। जो यमुना जी के साथ में एसोसिएट करते हैं क्या होता है उनके जीवन में, रति। रति माने क्या, भगवान के ऊपर आसक्ति बढ़ना, रति भगवान के ऊपर आसक्ति। भक्ति जीवन में हमें क्या चाहिए, हमारी रति, हमारी मति और हमारी गति क्या है, भगवान को पाना। गति माने क्या, जीवन का उद्देश्य, गोल क्या है हमारा, कृष्ण को पाना। हमारी मति क्या होनी चाहिए, कृष्ण के बारे में सोचना। हमारी रति किस पे होनी चाहिए, कृष्ण पे होनी चाहिए। यहाँ पे बोले मुकुंद रति वर्धिन, यहाँ पे मुकुंद बोला गया, यहाँ क्यों मुरारी नहीं बोला। मुकुंद माने जो मोक्ष देता है, लेकिन यमुना जी वो मोक्ष देने वाले भगवान को कन्विंस करके भक्तों को भक्ति देने के लिए बोलते हैं, ये यमुना जी का काम है। मुकुंद रतिवर्धनी, यहाँ पे इसको हम दो टाइप से ले सकते हैं इसका मीनिंग। मुकुंद रतिवर्धनी माने भक्तों को मुकुंद के ऊपर में रति बढ़ाना, या तो मुकुंद को भक्तों के ऊपर रति बढ़ाना, माने भगवान को भक्तों से प्रेम करवाना, ये भी यमुना जी का काम है। यमुना जी माँ है, माँ का काम क्या है, आप देखो साधारण भौतिक जगत में भी अगर कोई पिता अपने पुत्र पे गुस्सा हो जाता है तो सबसे पहले माँ बीच में मीडिएटिंग करेंगे, एक मिनट इसको समझाएगी, फिर इसको समझाएगी, फिर दोनों को मिला देगी। यमुना जी माँ है, ये उसका काम है। पहले हमको मनाएगी, देखो इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं है, भगवान के पास जाओ। फिर भगवान को मनाएगी, देखो ये उल्लू का पट्टा है फिर भी उसको ले लो, है तो बेकार का, कुछ नहीं कर सकते, हमारा है, जैसा भी है हमारा है, उसको मना लो। तो दोनों को कन्विंस करती है यमुना जी। और फिर जिस तरह से भौतिक जगत में पिता सबसे पहले माता को डांटेंगे, तुम्हारे पैम्परिंग की वजह से बिगड़ गया बच्चा, उसी तरह से कृष्ण यमुना जी को डांटते हैं, तुम्हारे पैम्परिंग की वजह से बिगड़ गए। तो यमुना जी बोलती नहीं, इस बार और नहीं करेगा भूल वो, पक्का इस बार माफ कर दो, उसको आप अपना लो। तो ये काम करती है यमुना जी। मुकुंद रति वर्धनी, मुकुंद को भी भगवान भक्तों के ऊपर में रति बढ़ाती। मुकुंद रति वर्धने जयति पद्म बंधो सुता, यमुना महारानी का एक नाम है पद्म बंध सुता, माने पद्म का बंधु, पद्म माने लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर का फ्रेंड कौन है, बंधु दोस्त कौन है, सूर्यदेव, सूर्य ही तो है ना। जब कमल ऐसे होते हैं पानी के अंदर में, जब सूर्य की किरण पड़ती है तब जाके कमल खुल जाते हैं। उसका मतलब सूर्य क्या हुआ? कमल के फ्रेंड। तो कमल के दोस्त की बेटी है, जयति पद्म बंधो सुता। पद्म बंधु सुता माने बेटी, तो उनको प्रणाम कर रहे, जयति पद्म बंधो सुता। ओ यमुना महारानी, आप किनकी बेटी है? पद्म बंधु की बेटी है, सूर्य की आप बेटी है। यहाँ पे ऐसा वर्ड क्यों एक्सप्लेन कर रहे, जयति पद्म बंधु सुता? नॉर्मली बोल सकते ना यमुना जी। यहाँ पे आचार्य बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य अपनी किरणों से बंद कमल को खोल देते हैं, उसी तरह से यमुना जी अपनी कृपा से भक्तों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम का कमल खोल देते हैं। और जब कमल खुल जाता है तब क्या होता है? भंवरा आके कमल का जो नेक्टर है उसको, मधु, कमल के मधु को चूसता है। उसी तरह से जब हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का, भगवान का बारे में ज्ञान का कमल खुल जाता है, भक्ति का कमल खुल जाता है, तब आते हैं ठाकुर जी। पहले नहीं, पहले यमुना जी सब काम कर देती है, बैकग्राउंड बनाती है, फिर ठाकुर जी भंवरा जैसे आते हैं और हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। आए समझ में? एक बार ये बोल के नेक्स्ट उसमें लेते हैं। कलिन्दगिरिमस्तके पटद मन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोलसात् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदं तुरा समधिरूढडोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धनी जयति पद्मबन्धोसुता। अभी दूसरा श्लोक में जाएंगे। भुवं भुवन पावनीमधिगतामनेकश्वने भुवं भुवन पावनीमधिगतामनेकश्वने प्रिया भैरवसेवितां सुखमयूरहं साधिभिः प्रिया भैरवसेवतां सुखमयूरहं सा तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकटमूर्तिका वालुका तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकटमूर्तिका वालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतूर्याप्रियं नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतूर्याप्रियं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। बोलते हैं भुवं भुवन पावनी, यमुना जी सारे लोगों का कल्याण करती है, सबको पावन करती है, तीनों लोगों का कल्याण करती है। उसके बाद लिखा है अधिगता मने कश्वने प्रिया भैरव सेवता। यमुना जी जब आती है गोलोक से नीचे पृथ्वी, अकेली नहीं आती है। जिस तरह से एक नवविवाहिता जब अपने पति के घर जाती है तो बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हंसती हुई शर्माती हुई आती है, तो यहाँ बोलते हैं कि यमुना जी भी जब आती है उनके साथ वो उनके अंदर पूरा व्रजधाम को लेके आती है। यमुना जी जब आती है प्रिया भैरव सेविता। और भी है यमुना जी के दोस्त। कौन है वो यमुना जी के दोस्त? तीन मुख्य दोस्त बोला गया है, सुख मयूर हंस आदि भी। सुख माने तोता, मयूर माने मोर, हंस माने हंस। तो ये तीन जो है ये भी आप देखोगे तो यमुना जी के तट के आसपास आपको हमेशा मोर दिखाई देगा, मोर, हंस और तोता। तो यहाँ पे ये तीनों का नाम क्यों लिया गया है? बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं यमुना जी के तट पे, लेकिन वैष्णव आचार्य टिप्पणी करते हैं कि जिस तरह से एक तोता अपने वाक्यों से, अपने वचनों से सेवा देता है, एक मोर अपने शरीर से नृत्य करके भगवान को आनंद देता है, और एक हंस अपने मन से मानसी सेवा भगवान को देता है, उसी तरह से जो जीव यमुना जी की शरण लेता है वो तीनों रूप से भगवान की पूजा करने में समर्थ बनता है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से भगवान की सेवा करना। तो यमुना जी हमें तीनों रूप से भगवान की सेवा करने में समर्थ बनाती है। कुछ वैष्णवाचार्य बोलते हैं कि इसका मतलब ये भी है कि हमें जो तीन प्रकार के दुख मिलते हैं इस भौतिक जगत में, तीन प्रकार के दुखी है, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक, तीन दुखी है। कुछ दुख हमें दूसरे लोग देते हैं, कुछ दुख हमारे मन से होता है, कुछ दुख प्रकृति देती है। तो ये जो तीन प्रकार के दुख है, मनसा वाचा कर्म से जो हमें दुख मिलता है, कोई कुछ बोल दे तो हमें दुख लगता है, कोई मार दे फिजिकली तो दुख लगता है, कभी कभी मन से दुख हो जाता है कि इसने हमको मान नहीं दिया, इसने मुझसे बात नहीं की। तो ये जो तीनों प्रकार के दुख से अगर कोई हमें मुक्त कर सकता है तो वो है यमुना जी। ये तीनों दुखों से मुक्त करके हमें भगवान के पास में लेके आती है, या तो ये तीनों प्रकार से भगवान का सेवा करने का मौका यमुना जी देती है। और ये भी बोल सकते हैं कि ये इस तीनों प्रकार से यमुना जी भगवान की सेवा करती है, यमुना जी भगवान की तीनों रूप से सेवा करती है। यमुना जी में भगवान की कितनी लीलाएं हैं, यमुना जी का पान कर सकते हैं, यमुना जी में भगवान, यमुना, अगर आप कृष्ण लीला में गहराई से जाओ तो ऐसी कोई बहुत कम ऐसी लीला होगी जिसमें यमुना जी का भाग नहीं है। हर लीला में यमुना जी तो है और है ही, और यमुना जी का रंग और भगवान का रंग एक है, इसलिए यमुना जी का दूसरा नाम है कृष्णा। यमुना जी का नाम है कृष्णा क्योंकि कृष्ण जैसी काली। एक बार कृष्ण और राधा रानी पानी में खेल रहे थे, लुका छुपी, लुका छुपी का खेल समझते हैं ना, एक पर्सन छुप जाएगा तो दूसरे को उसको ढूंढना है। तो कृष्ण बोलते पहले मैं छुप जाता हूँ, तुम मुझे ढूंढो। तो कभी कभी ये छुपा छुपी का खेल बाहर में खेलते थे यमुना के तट के पास, कभी यमुना के अंदर भी खेलते थे। तो यमुना के अंदर में जो है कृष्ण अंदर चले गए यमुना के अंदर, और राधा रानी जो है डुबकी लगा लगा के कृष्ण को ढूंढ रही है सब जगह, कहीं नहीं मिल रहे कृष्ण। फिर राधा रानी रोने लगी कि कृष्ण नहीं मिल रहे, बहुत देर हो गई, मैं तो ढूंढ रही हूँ नीचे ऊपर, कहीं यमुना के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। जब राधा रानी रोने लगी तब कृष्ण नदी के अंदर से, यमुना के अंदर से आवाज किए, बोले वृषभानु दुलारी तुम बोल दो एक बार कि तुम हार गए तो मैं अभी बाहर आता हूँ। राधा रानी बोली ठीक है मैं हार गई, कृष्ण बाहर आ गए। अब कृष्ण ने बोला अब मेरा चांस, तुम जो है यमुना में जो है छुप जाओ, मैं तुमको ढूंढता हूँ। राधा रानी बोली ठीक है, राधा रानी यमुना में छुप गई। कृष्ण एक मिनट में जाके राधा रानी को पकड़ लिए। राधा रानी बोला ऐसे कैसे हो गया? तो कृष्ण ने बोला कि यमुना काली है, तुम गोरी हो, आराम से दिखाई देती हो, काली काली यमुना में एकदम गोरा सा कौन है, साथ ही साथ मिल जाते हो। तो फिर जो है कृष्ण यमुना देवी से बात करते, बोलते मैं बहुत खुश हूँ कि तुम काली हो, क्योंकि इस खेल में कोई नहीं जीत सकता मेरे से, क्योंकि मैं काला हूँ, यमुना में काले काले कहीं छुप जाते तो सब कुछ काला है तो दिखाई नहीं देता। फिर राधा रानी ने बोला कि ऐसा करते ये लुका छुपी का खेल कभी यमुना में नहीं खेलेंगे, बाहर में हम खेलेंगे। तो यमुना अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करती है, भगवान को आनंद देती है। तो भक्त को भगवान की तीनों प्रकार से सेवा करनी चाहिए, मन से, काया से और वचन से। कैसे करेंगे वचन से भगवान की सेवा? भगवान का नाम लो, भगवान की कथा बोलो, अच्छे वचन बोलो। तोता क्या बोलता है? तोता मीठा बोलता है। भगवान के भक्त को जरूरी है मीठा बोलना, हमारी वाणी बहुत मीठी होनी चाहिए, हमारी वाणी कठोर नहीं होनी चाहिए, हमारी वाणी से हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये भी एक सेवा है भक्तों की, जो भगवत जन है, जो भक्त है, उन्हें कभी हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब गुरु के सामने, शिक्षा गुरु के सामने आए तभी वाणी में मिठास हो, उसके बाद कभी किसी और से बात करें तो अलग स्टाइल से बात करें, गुरु से बात करें तो अलग स्टाइल। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, शिक्षा गुरु से तो सब मीठा से 15 kg गुड़ मिला के बात करेंगे, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। साधारण व्यवहार में भी आपको ऐसी आदत होनी चाहिए कि आपकी वाणी में मिठास हो, आपके साथ जो बात करे उन्हें अच्छा लगे, मन को शांति मिले, मीठा वाला बोलना चाहिए। तो ये भक्त का गुण है, वाणी से भगवान की सेवा करें, मन से भगवान की सेवा करें। मन से, एक वैष्णव आचार्य थे, कंबन नाम था उनका, एक भक्त थे, उदयपुर में जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे वो श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। बहुत गरीब थे, बिल्कुल जो है उनके पास खाने के लिए तक भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनको भगवान से विशेष प्रेम था और हमेशा कोई अच्छी चीज़ देखते तो उनका दिल करता कि ये मैं भगवान के लिए ले लूँ, भगवान को धर दूँ, लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। तो एक बार जो उन्होंने देखा दूर से कि बहुत सारे अच्छे पके हुए आम कोई बेच रहा है, तो उसने एकदम मन से बोला कि ठाकुर जी मैं आम तो आपके लिए खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं मन से ये सारे आम आपको धरता हूँ। अब ऐसा बोल के चला गया। अब उसके बाद में वो टोकरी के आम खरीदने के लिए दो लोग आए, 500 रुपए की टोकरी थी आम की, एक आदमी ने 250 के आम लिए, दूसरे आदमी ने 250 के आम लिए। ये एक क्या बोलते हैं रियल इंसिडेंट है जो रिसेंटली मतलब रिसेंट पास्ट में हुआ है, वैष्णव आचार्यों ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो क्योंकि ये जो आम थे वे ऑलरेडी भगवान को धर दिए थे, तो जब ये दोनों ने जिसने आम खरीदे थे उसने ये आम खाए और खाने के बाद सो गए, तो उनके स्वप्न में श्रीनाथ जी भगवान आए और उनको दर्शन दिए। ये दोनों भक्तों को क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं, भगवान को धरे हुए आम खाए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वो धरने वाला जो था भक्त वो बहुत उच्च कोटि का था। तो क्या किया यहाँ पे कंबन ने, मानसिक रूप से भगवान की सेवा। तो वो तो बहुत आसान है, हम भी कर सकते हैं ना। जब मैंने पहली बार ये कथा सुनी थी बहुत सालों पहले, तब से मैंने मेरे जीवन का रूल बना दिया, मैं कहीं भी जाओ, कहीं भी, कभी गाड़ी में आप जाते रहो, विशाखापट्टनम में घूमते हो, कहीं भी कोई फल की जो बंडी दिखती है ना, मैं मन में एक बार सोच लेती हूँ सारा राधा दामोदर को ऑफर कर दिया। अब हमारे रसेस गोविंद को ये डाउट आ जाएगा कि माता जी अगर आप ऐसे सिटी में जितने भी बंडी देखोगे सब राधा दामोदर को ऑफर कर दोगे, तो उसके बाद अगर कोई भक्त जाके उसमें से खरीदता है और वो फिर भगवान को धरता है तो दो दो बार धरना हो जाएगा, अपराध नहीं हो जाएगा? नहीं होगा अपराध, धर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या मेरा कुछ लगा, क्या मेरा समय नष्ट हुआ, क्या पैसा लगा? कुछ नहीं लगा ना, बस एक भावना, ये भाव हमें रखने चाहिए। भक्ति जीवन तो कितना सरल है, इसमें कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, कितना आसान है। आप अब से अपने मन में लगा लो, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, आपको कहीं भी कोई भी बंडी दिखे, बहुत सारे फल दिखे, जरूरी नहीं हर बार आप सब खरीद के सागर नगर इस्कॉन मंदिर में लेके आ जाओ, मानसिक रूप से वहीं का वहीं वो पूरा बंडी भगवान को धर दो। फिर क्या होगा, जितने लोग वो लेंगे वो सारे भगवान का प्रसाद लेंगे। मुश्किल है, आसान है ना, कर सकते हैं ना, करेंगे अब से बस। कभी भी कुछ भी देखो, कुछ लोगों को शॉपिंग करने की बहुत आदत है, शॉपिंग करने के लिए जाओ वहां जितनी सारी साड़ियां देखो सब राधा रानी को धर दिया बस। सी भक्ति का मतलब है जीवन में कृष्ण को मिलाना, कितना आसान है, जो करो बस कृष्ण को धर दो, वही हमें करना है ना। कोई चीज खरीदो, लो, देखो, कृष्ण को धर दो, यह है मानसिक रूप से भगवान की सेवा का। सो मनसा वाचा कर्म, शरीर से, हमारे शरीर को हमें भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए। हम देखते हैं कुछ भक्त अपने शरीर के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, मैं इतने ज्यादा नहीं कर सकता, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे इतना रेस्ट चाहिए, मुझे उतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी हमें मैनेज कर लेते हैं, हमें तो निस्वार्थ भाव से पूरा पूरा सरेंडर होके भगवान की सेवा करनी चाहिए। भक्ति मानव शरीर में भगवान की सेवा करने के सिवाय हमारे शरीर का एक्चुअली कोई दाम नहीं है। आप एक देखो, वृक्ष का भी दाम है, उसके पत्ते यूज होते हैं, उसका फ्लावर यूज होता है, उसके फूल यूज होते हैं। एक गाय, एक पशु का भी दाम है, उसका गोबर यूज होता है, उसके स्किन से मृदंग बनता है, उसका यूरिन भी यूज होता है, उसका दूध भी यूज होता है, हमारा शरीर में कोई यूज नहीं है। एक अगरबत्ती देखो क्या है, पूरा मट्टी से बना हुआ है या कोई पाउडर से बना हुआ है, वो भी अपना पूरा शरीर को जला देती है भगवान की सेवा। अभी देखो अक्षय तृतीया आ रही है, हम लोग सब चंदन घसेंगे, चंदन का क्या होता है, पूरा शरीर भगवान की सेवा। लेकिन हमारा शरीर जो है वो भगवान की सेवा अगर नहीं करेंगे तो और इसका कोई दाम नहीं है। आप कभी सुना कि कोई किसी आदमी का शरीर जब जला दे, जलाने के बाद उस शरीर का जो राख है उसको कोई यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। हमारे शरीर का कोई अंग कोई काम में आने वाला नहीं है। इसीलिए जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, इस शरीर को भगवान की सेवा में उपयोग करना है। तो मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करना है। तो यहाँ पे भुवम भुवन पावनिम अधिगता मने कश्वने प्रिया भैरव सेवताम सुख मयूर हंसादिभि तरंग भुज कंकन प्रकट मुक्ति का बालुका। बहुत सुंदर लाइन है। तरंग भुज कंकन, यमुना महारानी की जो तरंगे होती है ना, वो उनकी भुजाएं है। समझ में आ रही है? उनकी भुजाएं है। जो जब हम यमुना जी में स्नान करते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि यमुना महारानी माँ है, वो हमें आलिंगन कर रही है। तरंग भुज कंकना, भुज कंकना। लेडीज को ऑर्नमेंट्स पहनने का बहुत शौक होता है, है? यमुना जी भी तो महिला है तो उन्हें भी शौक है। तो उनके ऑर्नमेंट्स क्या है? तरंग भुज कंकना। उनकी जो तरंगे है वो जब तट में जो रेणु होता है माटी को भिगा देती है, भिगाने के बाद जब सूर्य की किरण उस माटी पे पड़ती है ना, तब वो चमकती है माटी। जब वो चमकती है तब ऐसा लगता है कि यमुना नदी ने अपनी भुजाओं में हाथों में कंगन पहने हुए हैं और वो कंगन मोतियों से बने हुए वो चमक रहे हैं। आपने कभी देखा है? दोपहर के टाइम पे यमुना के तट के पास चले जाओ तो ये जो माटी होती है उस पर जब सूर्य के किरण पड़ते हैं तब वो चमकते हैं वो रेणु। तो वो चमकते हुए रेणु ऐसे लगते हैं जैसे यमुना जी के भुजाओं में कंगन पहनाया हुआ है, उन्होंने ऑर्नमेंट्स पहने हुए। तरंग भुज कंकणा प्रकट मोद प्रकट मुक्ति का वालुका नितंब तट सुंदरी। यमुना देवी के दो तट है ना, दो तट है। तो बोलते कि यमुना देवी के दो तट ऐसे है जैसे कि यमुना जी अपनी दोनों हाथ ऐसे रख के खड़ी हुई है, जैसे कि श्याम सुंदर को बोल रही हो कि कब आओगे, इंतजार कर रहे। तो नितंब तट सुंदरी, तो बोले यमुना जी इतनी सुंदर लग रही है, दोनों हाथ कमर पे है, हाथों में कंकन है, मतलब वो रेणु के कंकन बने हुए है, और सुख मयूर हमसा आसपास में है, भक्त लोग आसपास में है, इतनी सुंदर लग रही है। ऐसी सुंदर मैया को, माँ को नमत कृष्ण तुर्य प्रियम। कृष्ण की चौथी रानी है ना तुर्य प्रियम, तो ऐसी कृष्ण की जो प्रिया है उसको मेरा नमस्कार, नमत कृष्ण तुर्य प्रियम। नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे, समय हो गया। अरे बाप रे, अभी थोड़ा सा स्पीड में और शॉर्टकट में कंप्लीट करें। अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते, अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते, घना घन निभे सदा ध्रुव पराशरा भिष्टदे। विशु निभे सदा ध्रुव पराशरा भिष्टदे, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते, कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावया, कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावया। बोल रहे कि यमुना जी अनंत गुण भूषिते, यमुना जी में अनंत गुण है, बहुत सारे गुण है, और यमुना जी के जो आभूषण है, यहाँ पे लिखा है भूषिते माने आभूषण, वो सिर्फ बाहर के आभूषण ही नहीं है, अंदर में भी बहुत सारे आभूषण है। और भगवान को हम बाहर के आभूषणों से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आज अगर हम बहुत सारे सुंदर आभूषण पहन के राधा दामोदर के सामने आ जाए तो हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर के जो आभूषण है, हमारे अंदर के आभूषण क्या है? जैसे हमारा कंठ है, कंठ का आभूषण क्या है? जब कंठ गोविंद का नाम लेगा तो वो कंठ का आभूषण है। हमारे नाक की नथनी क्या है? जब हमारी नासिका से हम भगवान की तुलसी मंजरियों का सुगंध लेंगे तो वो हमारी नथनी है, जब कानों से भगवान की कथा सुनेंगे तो वो हमारे कान के कुंडल है, जब हाथों से भगवान की सेवा करेंगे तो वो हमारी हाथ की चूड़िया। ये सब क्या है? अंदर के आभूषण है, और अंदर का आभूषण हमें बहुत सुंदर बनाता है। भगवान अट्रैक्ट हो जाते हैं जब हमारे अंदर के बहुत सारे आभूषण हो। अनंत गुना भूषित है, यमुना जी में बहुत सारे अंदर के आभूषण बहुत सारे हैं। उसके बाद में लाइन बोलते हैं शिव विरंच देवस्तुते, शिव जी भी आपकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी भी आपकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं ब्रह्मा जी उनकी पूजा? क्योंकि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखो यमुना जी, मैं इतने सारे जीवों की सृष्टि करता हूँ, और ये देखने में भी जीव बहुत सुंदर दिखते हैं, एकदम अच्छे जेंटलमैन लगते हैं, लेकिन अंदर से चाइना प्रोडक्ट एकदम एकदम बेकार। देखने में इतना सुंदर, इतना शिष्ट, इतना अच्छा जेंटलमैन, लेकिन अंदर में क्या है? अभी अभी मांस खा के आया है, अभी अभी शराब पी के आया है, क्या फायदा? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं इतना कष्ट करके सृष्टि करता हूँ, लेकिन मेरे सारे ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है सब चाइना प्रोडक्ट है, बस दो बार हाथ में लो फिर टूट जाते हैं, लेकिन तुम तो मेरी सृष्टि की हुई सारे बेकार के प्रोडक्ट को भी अच्छा प्रोडक्ट बना के भगवान की सेवा में लगा देती हो, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। शिव जी भी यमुना जी की पूजा करते हैं। शिव जी बोलते हैं कि देखो, शिव जी भोले हैं ना, अगर कभी कोई शिव जी के पास आ जाए बोल दे कि भैया शिव जी देखिए मेरे को जो है सिर में दर्द है, तो शिव जी बोलेंगे अच्छा तुम्हारे सिर में दर्द है, कोई बात नहीं मैं सिर को ही काट देता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुमको दर्द नहीं हो। मतलब वो इतने भोले हैं, वो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन निकाल, अरे इसका और कैसे करना है उनको उतना पता नहीं चलता है। हर चीज हम देखते हैं ना, भोलेनाथ का हमेशा प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं, वेदर वो भौमासुर हो या भस्मासुर हो या कोई भी, रावण के साथ सबके साथ प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको इतना डीप थॉट नहीं करते, वो हर चीज़ का साथ ही साथ में वर दे देते हैं। लेकिन यमुना जी क्या करती है? हम में जो अच्छा है वो रहने देती है, लेकिन हम में जो बुरा है सिर्फ उसी को निकाल के बाहर फेंकती है। माने हम में अगर सर दर्द है तो सर को नहीं काटती है, सिर्फ सर दर्द को निकाल देती है। हमारी जो इंद्रिया है वो जो इंद्रिय है उसको हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये इंद्रियों में जो विषय भोगने की वासना है उसको अगर हम निकाल के फेंक दे तो फिर तो ये इंद्रिय यूजफुल है। देखो, हमको आंखों से अच्छा लगता है कुछ अच्छा देखना, कानों से अच्छा लगता है कुछ अच्छा सुनना, मुंह से लगता है कुछ अच्छा खाए, उसकी गलत नहीं। हम ये नहीं बोले कि आंख बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, कान बंद कर दो, बस इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान का प्रसाद खाओ, ये यमुना जी करती है। सिर्फ प्रॉब्लम को निकाल के बाहर फेंक देती है और हमारे जो अच्छा है वो उसे रहने देते हैं। इसीलिए शिव विरंची, ब्रह्मा और शिव दोनों यमुना जी की पूजा करते हैं। उसके बाद में बोला गया है घना घन निभे सदा, घना घन निभे सदा। यमुना जी कैसी है? घना घन, वो जो बादल होता है ना जिसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है, वैसी है यमुना जी। क्यों यमुना जी को ऐसे कंपेयर किया गया है? क्योंकि यमुना जी का रंग कृष्ण जैसा है, कृष्ण का रंग घनश्याम है। जो बादल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है काला बादल, वैसे कृष्ण है, वैसे हमारी यमुना जी है। दोनों का सेम कलर है, घन श्याम, एकदम घना घन बादल से भरी हुई, घना घन निभे सदा। तो यमुना जी का जो, यमुना जी में इतनी करुणा भरी हुई है, जिस तरह से एक बादल में करुणा पानी भरा हुआ रहता है, उस तरह से यमुना एकदम कृष्ण प्रेम से भरी हुई है। भक्तों को कृपा देने हुए, देने वाले जल से वो भरी हुई, घना घन निभे सदा, ये यमुना जी की का रूप है। एक बार कृष्ण जाके यशोदा मैया से बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, कृष्ण और राधा रानी खेल रहे हैं। राधा रानी बोलती है कृष्ण को, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, छोटे थे, लेकिन तुम मुझे छूना मत। कृष्ण बोलते क्यों भला मैं तुमको नहीं छू? तो राधा रानी बोलते हैं कि क्योंकि तुम काले हो, मुझे छूओगे तो मैं भी काली बन जाऊंगी, देखो मैं कितनी गोरी हूं, मुझे छूना नहीं। कृष्ण को बहुत बुरा लगा, जाके यशोदा माता से कंप्लेन किया, मैया मैं काला क्यों हूं? सब समय राधा रानी मुझे कोसती है कि तुम काले हो मैं गोरी हूं। यशोदा माता कुछ काम में थी तो बोला कृष्ण तुम काले नहीं हो, गलती से जो है वो काजल होता है ना, वो काजल से तुमको नहला दिया था सुबह, तुम इसलिए काले लग रहे हो। तो कृष्ण जो है एक कपड़ा लेके अपने आप को मोचना शुरू करते हैं तो लाल लाल हो जाते हैं लेकिन काला रंग तो जाता नहीं है। तो बोलते देखो मैया काला रंग तो नहीं जा रहा है। फिर यशोदा माता बोलते नहीं नहीं उसलिए नहीं, तुम काले इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा जब जन्म हुआ ना तब मैं सो गई थी, मेरे को नींद आ गई थी। तो कृष्ण बोला मैया को डांटने लगा कि आप क्यों सो गई जब मेरा जन्म हुआ। तो यशोदा माता ने बोला नहीं नहीं लल्ला, मेरे को ऐसे लगता है तुम इसलिए काले हो क्योंकि तुम काली रात में जन्मे थे। मैया मैं काली रात में भला क्यों जन्मा। अब जो बोलने से जो है वो तर्क कर रहा है यशोदा माता से, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों काला हूँ। फिर यशोदा माता ने बोला देखो ऐसा है, जब तुम पेट में थे ना तब मैं रोज यमुना का स्नान करती थी, यमुना काली है ना, काला रंग मेरे में आ गया। कृष्ण ने बोला अगर ये सच है तो तुम तो काली नहीं हुई, तुम गोरी हो, मैं कैसे काला होगी। तब जो यशोदा माता ने बोला देखो ऐसा है, राधा जो है ना वो कोरा बादल है, उसमें कुछ पानी नहीं है, तुम भरा हुआ बादल हो इसलिए तुम काला हो, तुम में इतने सारे गुण है, तुम भरा हुआ बादल हो और राधा रानी कोरा बादल है। अब ये बात कृष्ण को बहुत कन्विंसिंग लगी, फिर गए खेलने के लिए, फिर आई राधा रानी, ए देखो तुम मेरे को छूना मत। कृष्ण ने बोला कि तुम मुझे मत छूना, मैं भरा हुआ बादल, तुम कोरा बादल, तुम में कुछ नहीं, मैं भरा हुआ बादल हूँ। राधा रानी बोली ये नई बात तुमको किसने सिखाई भला। यशोदा माता ने बोला मैं भरा हुआ बादल हूँ, तुम कोरा बादल हो। तो यहाँ बोलते घना घना निभे सदा यमुना जी एकदम सी, जिस तरह से जब एक घना घन पानी से भरे हुए बादल जब कोई किसान देखता है ना तो उसको इतना आनंद आता है, इतनी श्रद्धा आती है कि इस बादल से मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये पानी गिरेगा और मेरे पौधे सब अच्छे से उगेंगे। उसी तरह से जब कोई भक्त यमुना जी की तरफ देखता है ना उसको 100% फेथ आता है कि इनसे मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। बस इसलिए घना घना निभे सदा। उसके बाद बोलते हैं ध्रुव पराशराभिष्ट दे, यमुना जी आपने ध्रुव को कृष्ण दिया। कैसे दिया यमुना जी ने ध्रुव? आप बोलेंगे माता जी हम तो गए थे मधुवन के पास तो कोई यमुना नहीं है। 5000 साल पहले थी यमुना जी मधुवन के पास से ही निकलती थी, तो ध्रुव जी ने यमुना जी का सहारा लिया, तो यमुना जी की कृपा से यमुना जी के पानी में स्नान करते थे, पूजा करते थे, तो ध्रुव जी को जो है भगवान प्राप्ति हुए। पराशर मुनि, पराशर मुनि को क्या चाहिए था? ध्रुव को भगवान चाहिए थे, पराशर मुनि को एक ज्ञानी बेटा चाहिए था जो शास्त्र का सबको प्रचार कर सके, तो यमुना जी ने वो भी दिया। पराशर मुनि को जो पुत्र है वेदव्यास मुनि कहाँ आया? यमुना जी के तट पे, यमुना जी के तट पे सत्यवती बैठी हुई थी और उनको जो है नौका में पराशर मुनि ले जाते हैं और यमुना के बीचों बीच कृष्ण द्वैपन मुनि व्यासदेव का जन्म होता है। तो ध्रुव पराशरा, जिसको जो चाहिए, आपको भौतिक इच्छा चाहिए तो यमुना जी वो देगी, आपको भगवान चाहिए तो यमुना जी वो भी देने में सामर्थ्य है। ध्रुव पराशरा भिष्ट विशुद्ध मथुरा तटे, मथुरा जैसी पावन तीर्थ धाम को छूती हुई यमुना जी विहार करती है, जाती है। सकल गोप गोपी वृते, सकल गोप सारी गोपियां सारे गो भगवान की गाय सब यमुना जी का पानी का पान करती है, सब यमुना जी के किनारे में आनंद लेती है। कृपा जलधि संश्रिते, उनका जो जल है वो कृपा से भरा हुआ है क्योंकि उनके जल को भगवान के चरणों ने ही नहीं छुआ है, भगवान के भक्तों ने भी छुआ है, भगवान के भक्तों के चरण की रेणु भी यमुना जी में है। गोप बालोकल की चरण की रेणु है, गोपी जो भक्ति के आचार्य है उनके चरण की रेणु भी है, व्रज धाम की चरण की रेणु है, गायों की चरण की रेणु है, तो सबकी चरण की रेणु जो है यमुना जी। तो यमुना जी का जल जो है वो कृपा का जल है। बोलते हैं कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावया, ओ यमुना जी मेरे मन में आप आके बैठो, मेरे मन में बैठो, मेरे मन को सुख दो। क्या सुख चाहिए? हम जो ये इतनी सारी बाधाएं आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी कितनी बाधाओं से इस भौतिक जगत में हम द्वंद कर रहे हैं, तो ये यमुना जी मेरे हृदय में आके बैठे, मेरे मन को शांति दीजिए। मन को शांति कब मिलेगी? मन को शांति तभी मिलेगी जब हम मन को कृष्ण से जोड़ेंगे। और मन को कृष्ण से कैसे जोड़ सकते हैं? यमुना जी जोड़ सकती है। वो तो ओ यमुना जी मेरे मन को शांति दीजिए, सुख दीजिए। नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। यया चरण पद्मजा मुरारी पो प्रियं भावुका समागमन तो भवे सकल सिद्धि था सेवताम तया सदृशता मया कमल जास पत्नी वया हरि प्रिय कलिंदया मनसि मे सदा स्थीयताम। बोलते हैं गंगा जी जो है वो भगवान की चरणों से आई है, लेकिन जब यमुना जी के साथ मिलती है तभी गंगा जी का भी मोल बढ़ता है। और बोलते हैं कि यमुना जी के समान कोई नहीं है। और बोल रहे हैं कि भक्तों की जो चिंता है वो यमुना जी ले लेती है। मैं और भी बोलना चाह रही थी विस्तार में, लेकिन समय कम है तो नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं। बट ओवरऑल इसका यही मीनिंग है। नमोस्ते यमुने सदा तव चरित्रमात्याद्भुतम् न जातु यमयातना भवति ते पया पानता यमोपि भगनी सुतान कथमुहं ते दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्युता गोपिका। बोलते हैं नमस्ते यमुना देवी, आपका जो चरित्र है वो अति अद्भुत चरित्र है। बोलते हैं कि मैं अपने हृदय से आपका नमन करता हूँ। और प्रिया भैरव सेवना, जिस तरह से गोपियों को आपने भगवान का प्रिय बना दिया, क्योंकि गोपियों ने आपकी सेवा की। कात्यायनी व्रत करते थे तब यमुना जी का यमुना जी के तट में जाके स्नान करते थे और वहीं तपस्या करते थे, तो उसी तरह से मुझे भी भगवान का प्रिय बना दो ओ यमुना जी। दिस इज हार्ट फेल्ट प्रेयर। घर जाने के बाद इस पे और विचार करना कैसे यमुना जी को हमें प्रार्थना करनी है। मम स्तुतव सन्निधो तनु नवात्वम एतवत् न दुर्लभ तमारति मुररिपो मुकुंदा प्रिया अतोष्टु तव लालना सुरधुनी परम संगमा तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि सिते। बोलते हैं कि जस्ट लाइक ए मदर, जस्ट लाइक एक माँ अपने बेटे को किस तरह से स्नान करा के शुद्ध करती है, उस तरह से यमुना जी आप भी भक्तों को सारी उनके जो दुर्गुण है उनसे आप दूर करके पवित्र करके भगवान का मुकुंद प्रिय, मुरारी पो मुकुंद प्रिय, भगवान का फेवरेट बना देती है। ये यमुना जी का काम है, भगवान का हमें फेवरेट बना देते हैं। यहाँ पे गंगा जी के बारे में बोला गया है कि गंगा जी को कभी आइसोलेशन में हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। गंगा जी और यमुना जी की दोनों की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा तर्क का विषय था कि गंगा जी महान है या यमुना जी। 450 साल पहले अकबर के राज्य में भी इसके बारे में बहुत तर्कातर्की हुई थी। बहुत सारे ऋषियों को और बहुत सारे वेदांती लोगों को बुलाया गया था इस पे तर्क करने का, और जीव गोस्वामी वहां गए थे और जीव गोस्वामी जीत गए। सारे इतने साधु लोग बैठे थे और सब जो है वेदांतिस्ट अलग अलग उस स्क्रिप्चर्स से जो है कोट बोल रहे थे कि गंगा बड़ी है, गंगा महान है यमुना से भी। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं नहीं यमुना महान है। और जीव गोस्वामी ने इतने सुंदर तर्क दिए, अकबर की सभा में उन्होंने स्थापना कर दी कि यमुना जी गंगा जी से ज़्यादा महान है। तो फिर अकबर ने बोला कि क्योंकि आप जीत गए आप मुझसे गिफ्ट मांगो, आपको क्या चाहिए? पता है जीव गोस्वामी ने क्या मांगा? जीव गोस्वामी ने कुछ खाली पेपर मांगे, खाली पेपर, प्लेन वाइट पेपर, क्योंकि उन दिनों में प्लेन वाइट पेपर मिलना बहुत मुश्किल था। हर एक चीज़ वो लोग पत्ते में लिखते थे तो बहुत मुश्किल होता था लिखने में, वो पेपर मिलना मतलब बहुत बड़ी बात थी। और जीव गोस्वामी इतना कुछ लिखना चाहते थे हम लोगों के लिए कि बाद में हम उनके जाने के बाद हम समझ पाए ये सब ज्ञान को। तो जीव गोस्वामी ने अकबर से पेपर लिए और फिर वो पेपर में उन्होंने शास्त्र लिखे। नेक्स्ट श्लोक में चले जाते। स्तुतिं तव करोतिका कमलजा सपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामुक्षता इयं तव कथादिका सकल गोपिका संगमा स्मराश्रमजलूनिभिः सकल गात्रजा ई संगमा। स्तुतिं तव करोतिका, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं कि आप जो है वो लक्ष्मी जी से भी महान है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे क्यों बोल रहे हैं लक्ष्मी जी से भी महान है? वो ऐसा तर्क देते हैं कि लक्ष्मी जी तो आपके शरीर का सिर्फ एक अंग छू पाती है, सिर्फ आपके पाद पद्म, वो बस उनका उधर ही वो आपको टच करती है, लेकिन यमुना जी तो आपके शरीर के हर एक अंग को छूती है, आपके नखून के अंदर भी चली जाती है वो। तो यमुना जी तो लक्ष्मी जी से भी बहुत महान है। और यहाँ पे और एक लाइन बोलते हैं कि श्रमजल लूनी भी, जब रासलीला होती थी तो पसीना हो जाता था कृष्ण को और गोपिकाओं को, तो वो सारा पसीना कहाँ जाता था? कृष्ण यमुना जी में स्नान करते थे, तो सारा पसीना गोपिकाओं का और कृष्ण का यमुना जी में मिक्स हो जाता था। तो अब इस बार जब वृंदावन जाओ, यमुना जी का जल हाथ में लो, तो सोचो कि अच्छा ये कृष्ण का गोपिकाओं का पसीना है। ये बात बोलते हैं यमुना जी के बारे में कि लक्ष्मी जी से भी आप महान हो, क्योंकि कृष्ण के हर अंग को आप छूती हो। लास्ट श्लोका में आ गए हम। तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकल सिद्धयो मुरारि पुष्ट संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभा श्रीहरि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं कि कोई अगर यमुना जी का शरण लेता है या यमुना जी को प्रार्थना करता है तो क्या होता है? तवाष्टकम मिदम मुदा, जो आपका ये अष्टकम गाते हैं, हम लोग सबने गा लिया ना, अब उसका ये भी सुन लो, उसका फल सुन लो क्या होगा जो हमने सब गाया। तवाष्टकम मिदम मुदा, मुदा माने हंसते हुए। किसी ने रोते हुए गाया है? हंसते हुए गाया सबने? रानी का फेस मुझे रोता हुआ लग रहा, फिर अफेक्ट नहीं होगा, हंसता हुआ फेस। तवाष्टकम मिदम मुदा, जिसने हंसते हुए प्यार से ये गा लिया आठ श्लोक, क्या होगा? समस्त दुरितक्षयो, सारे दुख दूर भागेंगे। भवति वही मुकुंद रति, मुकुंद के ऊपर रति बढ़ जाएगी, कृष्ण के ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा। तया सकल सिद्धयो, सारी सिद्धियों का प्राप्ति होगा। और फिर बोला है सारे सिन, सारे पाप से भी हम मुक्त हो जाएंगे। मुरारी पुष्ट संतुष्यति, मुरारी को हम संतोष खुश कर सकते हैं। हम जब ये गाते हैं भगवान के भक्तों की गुणगान करते तो भगवान को अच्छा लगता है ना, तो मुरारी को हम संतोष देते हैं, खुश करते हैं, हम मुरारी के फेवरेट बन जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्वभावो विजयी भवा, इस दुनिया में हम हर चीज़ कॉन्कर कर सकते हैं लेकिन हमारा स्वभाव हम कॉन्कर नहीं कर सकते, सही है ना? हमारे नीचे 200 लोग काम करते होंगे और वो 200 लोग को हम नचा सकते हैं लेकिन हमारा स्वभाव हमें नचाता है ना? हम हमारे स्वभाव के वश में हैं। आप किसी भी आदमी को देखो, बोलेगा अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा गया है। गया है मतलब क्या है? मतलब अब हो गया, मैं अपने स्वभाव के कंट्रोल में नहीं। अरे तुम इतने लोगों को कंट्रोल करते हो लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। स्वभाव कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, पूर्व से आता है ना, पूर्व जन्म से हमारे साथ आता है ना स्वभाव, बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ बोल रहे जो यमुना जी की स्तुति करता है क्या होता है? स्वभावो विजयो भवत, स्वभाव का भी हम विजय कर सकते हैं। तो करनी चाहिए ना यमुना जी की प्रार्थना, क्योंकि स्वभाव से डील करना कितना मुश्किल हो रहा है। लोग हमसे तंग आ चुके हैं हमारे स्वभाव से, हम हमारे स्वभाव को कंट्रोल नहीं कर पाते। और हमारे दूसरा स्वभाव ये भी है, इतने जन्मों से इतना शरीर बदला, इतनी योनियों में हम भटके, फिर भी हमको शांति नहीं मिली और हमें घूमना है और नई नई योनियों में जाना है। तो ये जो हमारा स्वभाव है, भटकने वाला स्वभाव, इस स्वभाव को यमुना जी कंट्रोल कर देती है, इस स्वभाव को यमुना जी बदल देती है। तो यमुना जी में हमारे स्वभाव बदलने का सामर्थ्य है, इसलिए हमें यमुना जी की स्तुति करना चाहिए। वदति वल्लभा श्रीहरि, हम भगवान के पास जा पाएंगे अगर यमुना जी का हम आश्रय लें। अच्छा, हम एक बार यमुना जी के डिफरेंट डिफरेंट नाम बोलेंगे और रूप गोस्वामी ने यमुना जी को जो नाम दिया है उसका भी हम उच्चारण करेंगे। यमुना जी का एक नाम है, मेरे पीछे बोलिए, कृष्णा, कृष्ण प्रिया, भानुपुत्री, भानुनंदिनी, मित्रपुत्री, मित्रनंदिनी, कालिंदी, कालिंदगिरी नंदिनी, और रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया नाम सर्वदार विंद बंधु नंदिनी, सर्वदार विंद बंधु नंदिनी, मतलब सर्वदार विंद माने लोटस की जो दोस्त है सूर्य देव की नंदिनी बेटी। आपको पता है रूप गोस्वामी ने भी यमुनाष्टक लिखा है, कभी और हम वो भी लेंगे, रूप गोस्वामी का यमुनाष्टक भी पंक्तियां हम विस्तार में लेंगे। और वो यमुनाष्टक की हर लास्ट लाइन में ये गाते हैं, माम पुनंतु सर्वदार विंद बंधु नंदिनी, माम पुनंतु सर्वदार विंद बंधु नंदिनी, मेरे पीछे माम पुनंतु सर्वधार विंद बंधु नंदिनी, मतलब ओ यमुना देवी सूर्य की पुत्री मुझे प्यूरिफाई करो, मुझे प्यूरिफाई करो। और अगर हमने आज यमुना जी की कथा की है तो इसको एंड करने में ये ठीक रहेगा कि चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जब यमुना जी को देखा तब उन्होंने क्या स्तुति गाया, अगर हम ये तीन बार पारायण करके यहाँ पे क्लास खत्म करेंगे, सो दैट आप घर जाके इसको बाय हार्ट कर लो जो चैतन्य महाप्रभु ने यमुना जी के लिए गाया था, तो अगली बार जब आप यमुना जी का दर्शन करो तो आप ये गा सकते हो। तो मैं गाऊंगी, आप मेरे पीछे गाइए। और क्योंकि हमने आज इतनी सारी यमुना जी की बात की तो आप सबको यमुना जी का विरह लग रहा होगा, तो इसीलिए संध्या आरती के बाद मेरे पास आइए, मैं यमुना जी का जल जो मैं अपने पास रखती हूँ वो लेके आई हूँ, मैं सबको थोड़ा सा छिड़क दूंगी। लग रहा है ना यमुना जी की इतनी बातें सुनने के बाद कि थोड़ा सा यमुना जी का जल हमारे सिर पे, हमें हमेशा रखती हूँ मेरे पास रहता है, मैं दूंगी। एक बार मेरे पीछे बोलिए, ये चैतन्य चरितामृतम के मध्य लीला के थर्ड चैप्टर का श्लोका नंबर 28, आप घर जाके इसको बाय हार्ट कर सकते हो। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री, पर प्रेम पात्री, द्रव ब्रह्म गात्री, द्रव चिदानंद भानो सदानंद सुनो, चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री, द्रव ब्रह्म गात्री, पर प्रेम पात्री, द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम्लावित्री जगत्क्षेम धात्री, अघानाम्लावित्री जगत्क्षेम धात्री, पवित्र क्रियन्नावपुमित्र पुत्री, पवित्र क्रियन्नावपुमित्र पुत्री। और एक बार बोलेंगे, चिदानंद भानो सदानंद सुनो, चिदानंद भानो सदानंद, फिर से चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री, द्रव ब्रह्म गात्री, पर प्रेम पात्री, द्रव ब्रह्म गात्री, पर प्रेम पात्री, अघानाम लावित्री जगत्क्षेम धात्री, अघानाम लावित्री जगत्क्षेम धात्री, पवित्र क्रियोन्नावपुमित्र पुत्री, पवित्र क्रियोन्नावपुमित्र पुत्री, इसका मीनिंग मैं और नहीं बोल सकती, समय हो गया है, लेकिन आप घर जाके चैतन्य चरितामृत में इसका मीनिंग पढ़िए। बेसिकली बोल रहे हैं कि पर प्रेम पात्री, भगवान का प्रेम देती है, चिदानंद है, भगवान के लोक से आई है, अघानाम लावित्री, अघानाम लावित्री, अघा माने पाप, सब पाप से हमें मुक्त करती है, और जगत क्षेम धात्री, सारे जगत के क्षेम के बारे में, क्षेम मतलब हैप्पीनेस, उनका उनके वेल विशर है वो। और लास्ट में बोलते हैं कि प पवित्र क्रियोना, मतलब हमारी सारी क्रियाओं को पवित्र करिए, हे मित्र पुत्री। बोलो श्री यमुना महारानी की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण।